यस्तु
आद्यं सकलं यस्तु
भक्त्या सेवे वैष्णवः
पितृद्धरते सर्वाणि नरकस्थान महामुनि
कोई कोई एक एक लाइन पढ़ सकते हैं नहीं तो टाइम
न
कार्तिक सम मास
अर्थ प्राय सबको समझ में आ रहा है वह कार्तिक का समा मास अर्थ आप समझ रहे कार्तिक के समान और कोई मास नहीं है, है? इसके साथ कार्तिक मास के साथ और जो 11 मास आते हैं महीने के इसकी तुलना नहीं किया जा सकता, लेकिन एक मास का तुलना है। कौन सा महीना कौन सा मास? पुरुषोत्तम मास। वो 3 साल में एक बार आता है, लेकिन वो उस मास के बारे में यहाँ नहीं कहा जा रहा। विशेष रूप में जो 12 महीने जो एक साल में आते हैं उनके साथ में कंपेयर करके कार्तिक महीने को कहा जाता है कि कार्तिक मास के समान और कोई महीना नहीं है, क्योंकि कार्तिक जैसे मार्गशीर्ष महीना के पहले कार्तिक महीना आता है। अच्छा लोग ये भी कहते हैं कि कार्तिक नाम इसके किस लिए हुआ है ना, ये कीर्तिदा की पुत्री कौन कार्तिका, एक नाम राधा सहस्र नाम में भी एक नाम भी राधारण की है कार्तिका कीर्तिदा की पुत्री है कार्तिका, उसी से भी इसको कार्तिक कहते हैं राधारण के मां से। हम सब लोग कहते दामोदर का मां से, लेकिन साथ साथ इसको भी राधारण की मास के रूप में मनाया जाता है। कीर्तिदा की पुत्री कार्तिका बा राधारण की नाम के आधार पर भी इस महीना है, तो भगवान को राधारानी अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय है। जैसे मार्गशीर महीना भगवान की महीना है, लेकिन फिर भी कार्तिक महीना और राधारानी की महीना होने के कारण भगवान को प्रिय है। यदि भगवान ने गीता में कहा कि मासानंग मार्गशीर्षअस्मिन, महीने में मार्गशीर महीना हूं, लेकिन हम जान सकते कि मार्गशीर महीना को इतनी कोई इंपोर्टेंस नहीं है, कार्तिक महीना को सब लोग इंपोर्टेंस देते हैं। 12 महीने से साधारण से पुण्य कर्म करने के लिए लोग माघ में स्नान माघ महीने में इसके इससे श्रेष्ठ मानते वैशाख महीने को और इससे श्रेष्ठ कार्तिक को, ये भी हरिभक्त विलास में कहा गया। तो कार्तिक महीना को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए ये श्लोक उद्धृत करते हुए पद्म प्राण से पर जो सनातन गोस्वामी कहते कि नौ कार्तिक का समा मास कार्तिक महीना के समान और कोई मास नहीं है, तुलना नहीं की जा सकती। नौ कृत न समान युगम कृत युग कौन सा सत्ययुग, सत्ययुग के समान अन्य युग कोई नहीं है, क्योंकि इसमें धर्म संपूर्ण रूप में सुअनुष्ठित रहते हैं। धर्म के 4 पैर सत्य सोच दया तप इसी युग में प्रतिष्ठित रहते हैं। न वेद सदृशम शास्त्र भगवान की मुखारविंद से निश्चित वाणी जो वेद ये सब समस्त शास्त्रों की सारांश माना जाता है। न तीर्थ गंगया समम समस्त तीर्थ में गंगा श्रेष्ठ, भागवत के श्लोक में भी जैसे सूत्र को सभी कहते कि निम्नागानम यथा गंगा देवानाम अच्युत यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा भागवत पुराण, भागवत पुराण है क्या, यही समस्त वेदांत वेद वेदांत के सारांश है। वेदांत सूत्र का ही प्रामाणिक टीका भाष्य व्यासदेव जी ने जो स्वयं सारे वेद पुराणों को निश्चित रचना करके वेदांत सूत्र में रचना की, उसी वेदांत सूत्र के प्रामाणिक भाष्य के रूप में श्रीमद भागवत को स्वयं व्यासदेव जी ने प्रस्तुत किए। तो इसलिए न वेद सदृश शास्त्र न तीर्थम गंगा कार्तिक प्रवर मास सारे महीने में सर्वश्रेष्ठ मास है कार्तिक, और ये वैष्णव को बड़ा प्रिय है, वैष्णवानं प्रिय सदा, कार्तिकं सकलं जस्तु भक्त्या सवेत वैष्णव। ये कार्तिक महीना में वैष्णवजन कार्तिक मास महीने की जो विधि विधान को ठीक से पालन करते, कार्तिक व्रत को पालन करके संभव सभी प्रकार के अभिष्ट प्राप्त करते हैं। पितृन उद्धरते सर्वान नरक नरक स्थान महामुनि, अपने पितरों को भी उद्धार कर ले। वैष्णवजन अन्य स्वतंत्र रूप से पितृपक्ष में श्राद्धा आदि न देकर भी केवल कार्तिक व्रत पालन करके ही अपने पितरों को भी कहा भेज सकते हैं वैकुंठ में, नित्य भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ में भेजने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक महीना की विशेष प्राधान्य लेता है। वैष्णव के सभी प्रकार के अभिलाष इस कार्तिक व्रत व कार्तिक मास में व्रत धारण करके मनोवांछित इनके समस्त प्रकार के मन की अभिलाषा पूर्ण हो सकता है। तो इसकी विशेष बहुत कुछ दिया गया है, इसकी महात्म्य खाली पढ़ता हूं आप लोग हरिवंत विलास में। सनातन गोस्वामी कहते कि बहुत संक्षेप में ये भिन्न भिन्न पुराण से उद्धृत करते हुए और वैद श्रुति शास्त्र से मैं कार्तिक महिमा को यहाँ पर संकलन कर रहा हूं। कार्तिक महीना जो व्रत धारण करने की जो महीना है, कार्तिकस्य तु मासस्य कोट्यंशेनापि नार्हति सर्वतीर्थेषु जत्स्नानं सर्वदानेषु जत्फलम् एकतः सर्वतीर्थानि सर्वजज्ञासदक्षिणः एकतः पुष्करवास कुरुक्षेत्रे हिमाचले निरुतुल्य सुवर्णानि सर्वदानानि चैकतः एकतः कार्तिक वत्स सर्वदा केशव प्रियः जकिंचित क्रियते पुण्यं विष्णु उद्दिश्य कार्तिके तदखेयं तब अक्षयं भवेत् सर्वैः सत्योक्तं तव नारदः कार्तिकः खलं वैमासं सर्वमासेषु च उत्तमं पुण्यानां परमं पुण्यं पावनानि च पावनानां। कार्तिक महीना से कहते कि कार्तिक व्रत को धारण करने वाला विधि विधान पूर्वक कार्तिक व्रत को जो पालन किया है पूरे महीना, उसकी जो पुण्य होता है इसकी करोड़ों अंश से भी एक अंश जितनी पुण्य होता, माने संपूर्ण महीने की जो व्रत धारण करके जो पुण्य अर्जन किया उसके एक करोड़ भाग उसको करके एक भाग का छोटा जो सूक्ष्म भाग होता है, तो उसी को यदि आप एक साइड में रखेंगे और दूसरे साइड में क्या रखेंगे, सब तीर्थ में स्नान कर देगा, सर्व तीर्थेषु जत स्नानं सर्वदानेषु जत फलम, जितने भी तीर्थ स्नान पृथ्वी के सर्व तीर्थ से कोई स्नान करके आया सब कुछ दान किया, सर्वस्व भी दान किया बड़ी महाराज की तरफ, सर्व प्यार सभी प्रकार के यज्ञ भी अनुष्ठान कर लिया, असमध्य बाद आदि जितने भी यज्ञ अनुष्ठान स्वदक्षिणा दक्षिण के साथ ब्राह्मण को प्रसन्न किया, इसमें भी जो पुण्य भी उसकी हुआ, पुष्कर में वास किया, कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण के समय में जाकर कुरुक्षेत्र में स्नान किया सूर्यपराय चंद्र ग्रहण के समय में, हिमालय में वास किया व पुष्कर में वास किया, मेरुतुल्य सुवर्णानी जो सुवर्ण के हे पहाड़ के समान स्वर्ण ब्राह्मणों को दान किया, ये सभी पुण्य के माध्यम से जितनी उसकी पुण्य सब हुआ, सभी पुण्य को पूरा जिंदगी में जितनी पुण्य किया उसको एकाठी करके यदि एक साइड में रखा जाए और जो कार्तिक व्रत धारण करने वाला व्यक्ति का जो पुण्य हुआ है एक महीना में, तो उसकी कोई अंश से एक अंश सूक्ष्म अंश को दूसरे साइड में रखा जाए तो फिर कौन सा अंश ज्यादा वजन होगा है? फिर कहते कार्तिक महीना की जो पुण्य है ये अधिक वजन होगा, इसलिए कार्तिक महीना की विशेष महीमा है। ये सत्य ऐसे कहते कि नारद में इसको सत्य सत्य कह रहा हूं, जत किंचित क्रियते पुण्यं विष्णु उद्देश्य कार्तिक का विष्णु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक में जो व्रत धारण करने वाला व्यक्ति उसको जो पुण्य मिलता है ये अक्षय रहता, तब अक्षयन भवेत सर्वं, सर्वदा ये अक्षय रहता है, पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। कार्तिक महीना में जो पुण्य को धारण कर लिया जिस व्रत को पालन करके उस कार्तिक महीने की जो पुण्य ये कभी क्षय नहीं होते हैं, ये अक्षय रहते हैं। अक्षयन भवत सर्वं सत्योत्तम तवनार, ये मैं सत्य वचन कह रहा हूं, स्वयं नारद उनको कह रहे कि मैं सत्य वचन तुमको कह रहा हूं, क्योंकि कार्तिक महीना की पुण्य की कहानी आती है और यही पद्म पुराण में विशेष रूप में सत्यभामा की पूर्व जन्म का चरित्र के रूप में। सत्यभामा एक दिन बड़े उत्सुकता के साथ भगवान श्री कृष्ण को एकांत में देखते हुए भगवान से जिज्ञासा करने लगी, हे प्रभु मेरे मन में सब समय एक आशंका उत्पन्न होती है कि मैं आपकी इतनी प्रियतमा रानी कैसे बने, आपकी 16108 रानियों में से फिर मैं आपकी इतनी प्रेयसी कितनी सर्वश्रेष्ठ प्रेयसी कैसे बनी। क्योंकि गोस्वामी कहते रूप गोस्वामी अपने रचना में कहते प्रकृत में द्वारका में जो मुख्य दो रानी रुक्मणी और सत्यभामा, रुक्मणी की प्रकृत में चंद्रावली के ही विस्तार मानी जाती है और राधारानी की विस्तार कौन मानी जाती है, सत्यभामा है। राधारानी के स्वभाव के कुछ गुण उनकी चरित्र में दिखाई पड़ते हैं, इनके बामा बाम में भाव से मान करना, जैसे जैसे राधारानी के पास में ब्रज में थे ऐसा ही रूप गोस्वामी तो अपने जो नाटक में ललित माधव नाटक में कहते कि वो राधारानी ही बाप में वही ही सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई, जो है उनके विस्तार माने जाते कम से कम। तो उन्होंने जिज्ञासा की कि मेरी इसे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुई, मैं आपकी इतनी नित्य प्रेयसी और सभी प्रेयसी में से सर्वश्रेष्ठ कैसे बन गई, और आपके साथ में स्वर्ग आदि भ्रमण, आपके साथ में वही गरुड़ के आसन में गरुड़ के मैंने ऊपर बैठकर इसी मर्त्य लोक में रहते हुए भी आपके साथ में स्वर्ग आदि भ्रमण की, और आपने मुझे प्रसन्न करने के लिए देवताओं के साथ में भी युद्ध किए, वो पारिजात पुस्तक के लिए और पारिजात वृक्ष को पूरा उखाड़ के लाकर मेरे अंगन में रख दिए, देवताओं की स्वभाव भी उठा के ले आए, कौन सा सुधरा सभा देवताओं की भगवान उठा के लाकर द्वारका में रख दी। बोले मैं ऐसा ही इतनी प्रियतमा पत्नी कैसे बना आपका, क्या रहस्य, आप कृपा करके मुझे सब जानते हैं आप है? आप इसके रहस्य मुझे बताइए। तो भगवान ने बड़े प्रसन्न होकर इसलिए एकांत में उनको सुनाया कहानी कि तुम्हारा पूर्व जन्म क्या था है? तो कह के सत्यभामा तुम जब सच सच तुम्हारा पूर्व जन्म की इतिहास जानना चाहती हो और तुम कैसे मेरे प्रेयसी बनी, तो मैं कह रहा हूं कि देखो पूर्व जन्म में तुम एक व्यक्ति का पुत्र था, उनके नाम था देव शर्मा, वो मायापुरी में रहते था, ब्राह्मण कहाँ रहता था, ब्राह्मण गोकुल में जन्म हुआ था, मायापुरी, एक तो मायापुरी हमारे जो कौन सा मायापुर है हमारा फेमस मायापुर के जो स्कल के हेडक्वार्टर्स है गौरांग महाप्रभु की लीला स्थली आविर्भाव स्थली, और दूसरे मायापुरी किसे कहते हैं, जो 12 पुरी तीर्थ में काउंट होते हैं इनमें से मायापुरी किसे कहा जाता है, हरिद्वार ही मायापुरी है, इसको भी मायापुरी कहते हैं, यदि 12 पुरी 12 मैंने पुरी को काउंट करा जाता तीर्थ में से हरिद्वार आता है मायापुरी उसके नाम है, इसलिए ब्राह्मण देव शर्मा उस मायापुरी में निवास करता था और बड़े सुशील आचरण वाले बहुत धर्मशील था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं थे, बहुत तपस्या और व्रत रखने पर भी अंत में प्रौढ़ावस्था में उसकी पुत्री जन्म हुई और उसके नाम और रखी थी, वो रखा था क्या नाम गुणवती, लेकिन जब उसकी पुत्री विवाह के समय हो गया तो उसको शादी कैसे देगा, सोचते सोचते उसी अपना जो गुरुकुल में पढ़ने वाला एक शिष्य था उसके नाम था चंद्र शर्मा, चंद्र नाम के शिष्य के साथ अपने लड़की को शादी दे दी, और शिष्य भी बड़ा आज्ञाकारी था और गुरुकुल में अपने पिताजी के समान मानते हुए और जो गुरु आश्रम में रहा तो फिर वो उनके पिता पुत्र के समान जैसे संबंध हो गया और वो चंद्र शर्मा फिर गुणवती को शादी विवाह करके ही जो पूर्व जन्म में सत्यभामा थी गुणवती तो उनके घर में ही रहते थे, प्रत्येक दिन उनमें से उठकर ब्राह्मण उचित कर्म अग्निहोत्र यज्ञ अन्य अन्य यज्ञ आदि करते थे। तो एक दिन जंगल में गए थे दोनों, देव शर्मा और चंद्र शर्मा दोनों गए थे यज्ञ के समय भिन्न भिन्न प्रकार के सामग्री को एकत्रित करके लाने के लिए है, अब तक जाकर जंगल में जो विशाल पर्वत के आसपास में हुई इधर उधर घूम रहे थे उस समय हठात एक राक्षस आ गया सामने, विशाल राक्षस आकर दोनों को मार डाला तुरंत, ये कुछ सोचने के पहले ही मार डाला तुरंत। तो हठात इनकी इसे आकस्मिक अकाल मृत्यु होने के कारण वो लोग सोचे भी नहीं थे, लेकिन भगवान विष्णु, भगवान विष्णु ने उनके लिए बैकुंठ से विमान भेज दिए, क्योंकि उन्होंने पुण्यात्मा थे और अंत समय में भगवान को भी चिंतन करते थे, तो इसलिए बैकुंठ से विमान आकर दोनों को लेकर चले गए। मैं संक्षेप में बहुत विस्तार से नहीं कह रहा हूं। और इस घटना, इस खबर आकर पहुंच गया किसके पास? गुणवत्ती के पास। बड़े दुखी यही सुनते ही खबर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। कई घंटे तक ऐसे मूर्छित रहने के बाद फिर दोबारा दो चेतना आने लगा, फिर विलाप करने लगे, हे पिताजी, हे पतिदेव, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए? मेरी भरण पोषण कौन करने वाला है? मुझे कौन देखभाल करेगा? और बहुत रोते रोते फिर अंत में पड़ोसी लोगों को शांत कराने के प्रांत, फिर वो कुछ उनके घर में जो कुछ भी सामान था कुछ बेच बाच के उनके श्राद्धादि कर्मों को संपन्न की। लेकिन उस दिन से संकल्प कर ली कि मेरे पति ही कौन? भगवान विष्णु। बस श्री कृष्ण के अलावा दूसरे किसी को पति रूप में जीवन काल में स्वीकार नहीं करूंगी। भगवान को पति रूपये प्राप्त करने की भावना रखते हुए और प्रत्येक महीने की एकादशी व्रत को धारण करते थे, विशेष रूप में कार्तिक महीना, कार्तिक महीना जो आते थे पूरे विधिवत, शास्त्र में जैसा विधि बता गया विधिवत वो कार्तिक महीना के व्रत को पालन करते थे। प्रत्येक दिन शेष और अंतिम प्रहर में जगना, इसको जागरण कहते, अंत हरि जागरण कहते, तो अंतिम प्रहर में जग जाना, फिर प्रातः काल में स्नान करना, कार्तिक व्रत का मुख्य तीन नियम है, स्नान करना और दानवर के अर्चन करना, दीप दान, भगवान सामने दीप प्रदान करना, और कई अंग है आगे चर्चा करेंगे। तो उन्होंने सभी विधिवत इसे पालन कर रहे थे, हरि जागरण, पाप स्नान, तुलसी सेवनम, उज्जापनम, दीपदानम, और ये कार्तिक महीना के पांच मुख्य अंग कहा जाते थे ब्रह्म। ये सारे अंग को उन्होंने अपने जीवन में निभा ली, कौन? गुणवती ने। पूरा जीवन इसी प्रकार उन्होंने कठोर व्रत को पालन करने के कारण जो अंतिम दिन में किसी साल में जब उन्होंने बड़े रुग्णा थे, कई प्रकार के व्याधिग्रस्त थे, फिर भी कार्तिक महीना आने के कारण गंगा में स्नान करने के लिए गई। और शरीर के प्रति ध्यान न देते हुए रुग्णा शरीर में भुकार भी थे, चलने की पूरा शक्ति भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ा कार्तिक व्रत को नहीं छोड़ोगी। गंगा में जाकर जब स्नान करने के लिए गंगा जल में उतर गई, ठंडे पानी, हरिद्वार में कितनी ठंडी पानी तो आप देखे, कार्तिक महीने में जब ठंडे पानी में गंगा में उतर गए तो उसका शरीर कांपने लगे पूरा, बहुत मैंने कंपनी लगी। लेकिन उसी समय में जो बड़ा कष्ट में विचलित हो रही थी, स्वर्ग से विमान आ गई, विष्णु दूत ने स्वर्ग से विमान लेकर आए और उनको उस विमान में आरोहण करा के उनको बैठा कर ले गए नित्य वैकुंठ धाम में। भगवान कहा कि इसी प्रकार तुम मेरे धाम में आ गए हो, पूर्वजन्म में गुणवती के रूप में तुम ऐसे तपस्या की थी देव शर्मा के पुत्र के रूप में, और मेरे नित्य धाम में तुम मेरी बड़े निकटतम सारूप्य मेरे सन्निकट में रहकर मेरी सेवा को प्राप्त कर ली। ये तुम्हारे कठोर तपस्या के कारण और जिस भावना से तपस्या की थी कि मुझे पति रूप में प्राप्त करना, और इसलिए तुम्हारा अभिलाष को पूर्ण करने के लिए फिर जब ये द्वापर में, ये तृतीया की कहानी थी, तृतीया युग में ऐसे ही ये कहानी रहा था, द्वापर में जब लीला को प्रकट करने के लिए इसे धरा पर मुझे आना पड़ा, अभी मैं अन्य सभी पार्षदों के साथ में तुमको भी ये धरा पर मैं लेकर आई, और तुम्हारे जो वही जो पिता पूर्व जन्म में जो था, कौन? देव शर्मा, इस जन्म में वो शक्राजित जादव के रूप में जन्म लिया था, पूर्व जन्म के तुम्हारा जो पति था चंद्र शर्मा वो अक्रूर जी के रूप में इस जन्म में जन्म लिया है, और लेकिन तुम जेहेतु मुझे ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए अभिलाषा रखे थे, इसीलिए इसी जन्म में तुम मुझे पति रूप में प्राप्त की, और तुम्हारे हमारा ये विच्छेद ऐसे ही कल्प अंत तक नहीं होगा, क्योंकि तुम बड़े श्रद्धा के साथ कार्तिक व्रत को धारण किए थे। इसलिए एक कार्तिक महिमा का, कार्तिक व्रत की महिमा को समझाने के लिए एक उदाहरण दी गई है। इसके ऊपर पद्मपुराण में कहानी, ऐसी कई कहानियां हैं, सारे कहानी कहना संभव नहीं है। तो एक कहानी की सत्यभामा किस प्रकार पूर्वजन्म में कार्तिक व्रत को धारण करते हुए और इस जन्म में भगवान के नित्य, भगवान के नित्य प्रवेशी बन सके। रानियों में सर्वश्रेष्ठ प्रिया रानी रूप में उनकी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसकी आगे और भी कहते हुए कार्तिक महीना लगभग बहुत तेज है, सारे लोग कुछ हम पढ़ते हैं। व्रताना नाम सर्वेशम सर्वेशम जन्मानुगम फलम कार्तिकेतुः व्रतस्येत्तम फलम जन्मस्तानुगम। अन्य अन्य जो व्रत पालन करते हैं, अन्य व्रत की जो पालन का फल एक जन्म में केवल उसको मिलता है, लेकिन कार्तिक जन्म की जो फल ये सत जन्म तक, सौ बार जन्म थोड़े बहुत भी जो पुण्य करता है सौ जन्म तक उसकी फल इसको प्राप्त होते हैं। अक्रुवतीर्थ विपेन्द्र कार्तिक्यां समुपोष्य चह स्नात्वा जत फलमाप्नोति तत्सित्वा वैष्णवं व्रतम्। अक्रुवतीर्थ कहां पर आता, मथुरा में, मथुरा में अक्रूर तीर्थ आती है, अक्रूर घाट, जहां से विशेष में ब्रजमंडल में ख्यात है कि ब्रजेंद्रानंदन कृष्ण वहीं से ब्रज में रह गए और वासुदेव कृष्ण वही अक्रूर तीर्थ से कहां चले गए, मथुरा में चले गए। तो अक्रूर तीर्थ में स्नान का विशेष महिमा है, कौन सा दिन में, विशेष रूप में हरिबोधिनी एकादशी के दिन है। लेकिन उस हरिबोधिनी व्रत को धारण करते हुए जो अक्रूर तीर्थ में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, कार्तिक व्रत को पालन करने से भी उसी फल साधक को प्राप्त हो जाता है। उस कार्तिक पूर्णिमा, यदि कार्तिक पूर्णिमा में केवल उपवास रहकर अक्रूर तीर्थ में स्नान करने से उस फल प्राप्त हो जाता है। जो फल विशेष रूप में जो हरिबोधिनी एकादशी में व्रत धारण करके महिमा बहुत कुछ बता दिया, हरिबोधिनी एकादशी के जो कार्तिक में जो आता है तो उसमें जो एकादशी व्रत धारण करता है वो भी नित्य वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। लेकिन उस व्रत की फल केवल कार्तिक पूर्णिमा में जाकर नहीं, विशेष रूप में अक्रूर तीर्थ में स्नान करने से जो फल होता है कार्तिक महीने में केवल उस हरिबोधिनी एकादशी को पालन करने से वही फल मिल जाता है। कार्तिक पूर्णिमा में उपवास रहकर अक्रूर तीर्थ में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, कार्तिक महीने में वैष्णव व्रत धारण करके उस फल को प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद कहते काशी धाम नैमिषारण्य पुष्कर सहस्त्र तीर्थ को गमन करने से जो पुण्य मिलता है, कार्तिक व्रत द्वारा भी से वो सारे फल प्राप्त हो जाता है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व मुनि सप्तम वेदोनिन्न व्रत तेज व्रतं कृत्वा तु कार्तिकेः। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व कोई भी हो, ये सभी की एक कर्तव्य है, कौन सा, क्या करना, कार्तिक व्रत को धारण करना। और प्रत्येक का ये भी कर्तव्य है कि जो कुछ भी, कहते कि आगे 25 कार्तिके मनी शार्दूल सशक्य वैष्णवं व्रतम जह करोति यथा तंतु मुक्ति तस्य कर स्थिता। सुपूर्ण कार्तिक वासी देवर्षि पितृ सेविते क्रियमाणे व्रते नृणां स्वल्पे अपि श्याम महाफलम। थोड़ा सा पुण्य जो कार्तिक महीना में करता है वो महापुण्य देने वाली होती है। प्रत्येक दिन हम जो कुछ भी खाते हैं कार्तिक महीना में थोड़ा सा खाना कम करना चाहिए, थोड़ा सा कम खाना चाहिए। और भगवान जो इसी प्रकार अपने आहार को थोड़ा सा कमा कर प्रत्येक दिन कार्तिक में स्नान आदि और दीप आदि भगवान को अर्पण करते हुए जो व्रत को पालन करने के लिए प्रयास भी करता है वो भगवान के सारूप्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। कार्तिक व्रत जो पालन करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र जो भी हो, इनको फिर इतर जन्म में बाहर निम्न जन्म में आना नहीं पड़ता है। ये भी लिखा हुआ कि हे कि विधि पूर्वक जो कार्तिक व्रत को धारण करता है मोक्ष उसका हाथ नहीं है, अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त करना उसकी क्या हाथ की मुट्ठी में है, वो इसके हकदार बन जाता है। कार्तिक व्रत धारण किया तो निश्चित रूप में सुनिश्चित है कहां जाना, भगवान के धाम जाना। देवर्षि पितृगण ये सभी भी प्रसन्न हो जाते हैं, सुपवित्र कार्तिक ये भी सभी प्रसन्न हो जाते हैं थोड़े से भी, जैसे गीता में कहते कि स्वल्पी अश्य धर्म से प्रायतः महत्व होया, थोड़े से भी यदि कोई भगवान हरि की भक्ति किया है जीवन काल में और विशेष रूप में कार्तिक महीना में, तो फिर इस कार्तिक महीना में इसको विशेष पूर्व में प्राप्त हो जाता है, उनके पितरों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और कार्तिक महीना में विशेष कार्तिक स्वस्तिक अनुकृत्वा समय तन्न संशय कार्तिक जो करती जकोत्ते एवं केशवालय मंगलम स्वर्गस्था शोभते सासु कोपति पक्षिणी यथा जकरोति नरो नित्यं कार्तिके पत्र भोजनम न स दुर्गति मापनोति जावत इंद्र चंद्र इंद्र चतुर्दश। किसको कहा कि कोई माता जी है तो स्त्रियों के लिए विशेष रूप में जाकर हरि मंदिर में क्या बनाना चाहिए, मंडल क्या बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, कार्तिके करोक्तव्य केशवालय मंडलम, केशवालय केशव के मंदिर में जाकर मंडल स्थापना करते हैं, राष्ट्र में मंडल से क्या कहते हैं उसको रंगोली। तो ये जो को जाकर धारण करते हैं स्वर्ग में जाकर निवास करती है, हम स्वर्ग में जाना नहीं, स्वर्ग में कम से कम स्वर्ग स्वभाव साथ हूँ जो करो कि नरो नित्यं कार्तिके पत्र भोजन, वो कार्तिक व्रत में कहा गया है कि पत्र भोजन करना चाहिए, किसमें खाना चाहिए विशेष रूप में, कौन सा पत्र कहा, पलाश पुत्र, पलाश क्या जानते पलाश किसको कहते हैं, केला नहीं पलाश का केला भी नहीं कहते, पलाश पत्र उसको क्या कहते हैं, मैंने जिसमें तो उसे रुई होता ना सिर्फ फूटता है, बड़ा बड़ा वृक्ष होते हैं तो ये पलाश वृक्ष, क्योंकि पलाश वृक्ष को ब्रह्मा जी की अवतार माना जाता है, ब्रह्मा जी का अब ब्रह्मा जी की जैसे अस्वस्थ वृक्ष भगवान विष्णु की प्रतिनिधित्व करता है, तो उस प्रकार पलाश वृक्ष करके ब्रह्मा जी की प्रतिनिधित्व करते हैं, तो विशेष रूप में कार्तिक मास में उस पत्र में खाने के लिए कहा गया। नौ सौ दुर्गति मापनौती जावत चंद्र, जो इंद्र चंद्र जब तक आकाश में है तब तक इसको दुर्गति प्राप्त नहीं होता, यदि कोई कार्तिक महीने पर पलाश पत्र में खाता है, जन्म प्रभति जत पापन मानव कृतज्ञ भवे तत्सर्वनाश मापनौती ब्रह्म पत्रेशु भोजना, इसको ब्रह्म पत्र भी कहते हैं पलाश पत्र को, पूर्व जन्म से जितनी भी पाप किया था सौ जन्म से समस्त पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, केवल यदि महीने भर वो पलाश पत्र में आहार करेगा भोजन करेगा है? सर्वकाल फलम स्तस्य सर्वतीर्थ फलम लभेत न वापी नरक पश्य ब्रह्म पत्रेषु भोजनम है, समस्त प्रकार की कामनाएं उसके पूर्ण हो जाते हैं, सर्वतीर्थ की तीर्थ स्थान में भ्रमण करना स्नान करने का फल भी मिल जाता है, वो कभी भी नरक के दर्शन नहीं करता जो कि ब्रह्म पत्रेषु होता पलाश पत्र में कार्तिक महीने में भोजन करता है। ब्रह्मचर्य स्मृत साक्षात पलाश सर्वकामद मध्यम वर्जित पत्र सुदृश्य मुनिषत्तम, इसे साक्षात पलाश जो पलाश वृक्ष जो होता है समस्त साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मा जी की साक्षात स्वरूप माने जाने के कारण इस महीने में विशेष उसी पत्र में खाना, लेकिन उसकी मध्य पत्र को त्यागना, बीच वाले जो पत्र उसमें भोजन नहीं किया जाता, कि साइड पत्र को लाकर खाना, कैसे हमने देखे नहीं पलाश वृक्ष की कैसे पत्र कोई देखा ना कोई खाया इसमें अभी तक है, देखे हाँ तो कम से कम ये कहना है कि इनको आपको कुछ महीना में कार्तिक महीने में कम से कम कुछ पात्र में नहीं खाना भाई। विशेष रूप में जैसे एकादशी व्रत को धारण करते तो एकादशी व्रत में नियम है कि लोहा पात्र में नहीं खाना। लोहा पात्र कौन सा है? स्टील। अरे कड़ी युग कौन सा युग है? लोहो युग है। ये सोना युग था कौन सा? सुवर्ण युग था, सत्य युग। इसके बाद चांदी का युग क्या था? इसके बाद तांबे का युग था, द्वापर। अरे युग तो ये तो है ही, लोहो युग है। सब जगह कहीं जाओ स्टील के बर्तन दिखाई पड़ता है। लेकिन जब एकादशी व्रत का भी जो धारण करोगे उसका भी ये नियम है कि लोहो पात्र में कुकिंग भी नहीं होना चाहिए। जो खाना बनाते हैं लोहो पात्र में कुकिंग करके उस दिन नहीं खाना चाहिए एकादशी का दिन है। और लोहो पात्र में मैंने कुकिंग करके भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए, लोहा पात्र में स्वयं भी खाना नहीं चाहिए, इससे व्रत टूट जाता है। तो हम तो लोहा पात्र में खा रहे हैं, लोहा पात्र में कुकिंग कर रहे हैं है? लोहा पात्र विशेष रूप में स्टील का युग क्या कर सकते हैं। इसीलिए एकादशी व्रत यदि कोई धारण करना चाहता है उसे फलाहार करना, दूध और क्या फ्रूट्स एंड मिल्क, नॉन कुक चूट खाना, अनकुक चूट खाएगा तो अच्छा है, व्रत रख सकता। कुकिंग किया चीज खाया तो व्रत तोड़ने का चांस है। कहाँ से पात्र लाएगा? बहुत हैं। लेकिन प्रभुपाद जी का आप देखेंगे जो कुकिंग टिफिन रखा गया प्रभुपाद हाउस में लोहा का स्टील का नहीं है, किसमें है? पितल का है। प्रभुपाद जी आपने जो कुकिंग रखे हैं कह नहीं कह एक साथ में कुकिंग करते थे उसमें राइस दाल सब्जी एक साथ बैठा देते थे, तो वो पितल का है वो स्टील का नहीं है। जब ये प्रभुपाद जी इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे उस समय, लेकिन फिर भी अपने कुकिंग पॉट को ऐसा रखे थे पीतल का है, क्योंकि व्रत ऐसे में खाना मना है किसी व्रत में, और लोहा पात्र में कुकिंग करना। और कार्तिक महीने में इसलिए कहते हैं पत्र में अच्छा है कि साधु का खाने का ही सिस्टम है। हमारा वृंदावन में दिनों जो है बज में रहे बहुत दिन से, इनको यदि कोई प्लास्टिक के देता है प्लेट बा प्लास्टिक का ग्लास को ले, ये पसंद नहीं करते, इनको ये अच्छा लगता है पत्ता पत्ते में और कूलर में मिट्टी के कूलर में पानी पीना, बाहर से कूलर में कुछ छाछ पीना कुछ पीना, बार पत्ते से खाना, उनको बड़े आनंद आता है। ये साधु का वो जो मंदिर याद है, जो वो प्रेसिडेंट थे वृंदावन में, सारा सिस्टम मंदिर में ही शुरू कर दे। बस मंदिर में जो भक्तों को खाना है पत्ता और कूलर थाली में। तो यहाँ पर भी कह रहे कि ये कार्तिक महीने में कम से कम पलाश पत्र में खाना चाहिए, कि धातु पत्र में कलशा पत्र विशेष रूप में वर्जित है। और तिलदानं नदी स्नानं सत्कथा साधु सेवनं, तिलदानं तिल के दान करना, नदी में स्नान करना, बता हुआ नदी में स्नान करना श्रेष्ठ माना गया। सत्कथा साधु संग में हरि कथा का श्रवण कीर्तन करना, और साधु सेवनम नित्यम भागवत सेवा है, ग्रंथ भागवत तथा व्यक्ति भागवत की सेवा। भोजनम ब्रह्मपत्रेषु कार्तिकेय मुक्तिदायकम, कार्तिक महीने में ये मुक्ति प्रदान करते हैं। जागरण कार्तिकेय मासि जो करोति अरुणोदय दामोदराग्रे विप्रेन्द्र गो सहस्र फलम लभे, जो कार्तिक महीने में जागरण करता है विशेष रूप में अरुणोदय के रात्रि के अंतिम प्रहर, आठ प्रहर रात्रि होता है, तो व्रती कार्तिक व्रत रखने वाला उसको अंतिम प्रहर के सोना नहीं चाहिए, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में इसको जग जाना चाहिए। तीन मैंने जो सूर्य उदय का पहले तीन घंटे पहले इसको जग जाना चाहिए, अंतिम मुहूर्त अंतिम प्रहर में इसको जग जाना चाहिए। और जो इसी प्रकार के जग जाता है अंतिम प्रहर में स्नान करता है, तो फिर उसको दामोदराग्रे विप्रेन्द्र गो सहस्र फल लभे, इसको हजार गाय को दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। जागरण पश्चिम जामी जकरोति महामुनि कार्तिके सन्निधौ वैष्णव तत्पदन कर संस्थित है। जो साधु के शुश्रूषा और गोग्रास हरिकथा श्रवणादि और हरि पूजा शस्त्रास्त्र में जो है जागरण करता है, और ये कार्तिक महीना में विशेष रूप में करता है, ये बड़े दुष्प्राप्य है। ऐसे पुण्यात्मा की पुण्य की तुलना किसी के साथ नहीं दी जा सकती है। साधु सेवन गवान ग्रासन कथा विष्णु तथा विष्णु अर्चना विष्णु तथा अर्चनम जागरण पश्चिम जाने दुर्लभम कार्तिक कार्तिक करो, इस कलयुग में इसे बड़ा दुर्लभ है। विशेष में कलयुग की मानुष यदि ऐसी प्रकार धारण करता, गांव में करते हैं अभी भी है? अभी गांव में हमको पता है, गांव में उड़ीसा में थे, गांव में लोग कैसे जगते हैं, कितने बुढ़े आदमी भी जग जाते हैं। अंतिम प्रहर में उठ के स्नान करना, कहीं भी धुलते हैं पानी, जाकर तालाब में हो वा नदी पास में, तो हम छोटा नदी वहां भी जाकर लोग स्नान करते हैं, कोई नहीं तो कुआं से उठाकर भी पानी स्नान करते, बच्चे लोग भी स्नान कर लेते। सुबह सुबह प्रभात फेरी कीर्तन हरि संकीर्तन गांव में निकलता है कार्तिक महीने में, पहले से सिस्टम सुबह है। विशेष रूप में उड़ीसा में, बंगाल में, महाराष्ट्र में जहाँ पर ये प्रचलन है आज भी, जहाँ पर भक्तों की भक्ति का प्रचार है, और इसी प्रकार एक कार्तिक महीना में जो इस सारे व्रत को ठीक ठीक से धारण करता है तो उसकी पुण्य की कोई गिनती नहीं कर सकता। संक्षेप में कहना है कि जो कार्तिक महीने को व्रत को ठीक ठीक से पालन करता, विशेष रूप में सुबह पांच अंग जो कार्तिक व्रत के हैं, हरि जागरण, अंतिम प्रहर में रात्रि में जग जाना और जग कर प्रातः स्नान, स्नान करना, तुलसी सेवनम, तुलसी महारानी की सेवा करना, उज्जापनम, कैसे व्रत उज्जापन करना तो उसकी विधि आगे पढ़ेंगे, दीपदानम, दीपदान देना करना भगवान के सामने, विशेष रूप में सायंकाल में है दीपदान, और ये पांच अंग है। कितना टाइम हो गया? 9:30, ठीक है, 9:30 तक में क्लास कितने तक चलेगा? 9:30 तक, ओके। तो आज के तो इसी प्रकार कार्तिक महीना, कार्तिक व्रत को की महीना तो विशेष ये चलते रहता है, सही बस सेम बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है। कार्तिक व्रत को जो करते हैं, मुख्य बात है कि इसकी तुलना किसके साथ नहीं किया जा। संक्षेप में जैसे कहा गया कि शोक कहा कि कार्तिक व्रत करने से जो पुण्य होता है इसका करोड़ अंश की एक अंश को भी जब रख दिया जाए एक साइड में और दूसरे साइड में, और जितनी पुण्य सारे जिंदगी में किया कर सकता है व्यक्ति, जितनी यज्ञ किया, जितनी तीर्थ यात्रा किया, स्नान किया, पुण्य किया, ये सभी को लाकर एक साइड में, केवल कार्तिक व्रत को छोड़कर अन्य व्रत सब करके उसका पुण्य को दूसरे साइड में रखने पर भी इसकी एक करोड़ से अंश का भी एक अंश के साथ मेरी तुलना नहीं हो सकता है। संक्षेप में ये कहा गया कार्तिक महीना, यहां पर एक अंग जैसे कहा गया कि तुलसी सेवन, विशेष रूप में कार्तिक महीना में तुलसी सेवन। ये भी आता कि कार्तिक महीना क्यों इतने भगवान को प्रिय है, किसी भी प्रिय कहा गया, इसके बारे में शंखासुर की कथा भी आता है पुराण में, वही पद्म पुराण में आता है। शंखासुर ये राक्षस था, समुद्र का पुत्र बना, क्या नाम रहा उसका? शंखासुर रहा। ये जन्म धर्मी वो कहानी अलग है, ये दूसरा, ये शंखासुर, और ये बड़ा पतापी बना, बड़े पतापी बनकर स्वर्ग में जाकर इंद्र बने, इंद्रादि देवता उसके साथ युद्ध नहीं कर पाए, भाई से छोड़कर स्वर्ग छोड़कर जाकर विंध्याचल पर्वत में गुंफा में से छुप के रहने लगे, और जो गुंफा में छुप के रहने लगे तो फिर वहीं पर उन्होंने रहने लगे आनंद में, अपने वैदिक रीति में भगवान विष्णु की अर्चना करते हुए बड़े प्रसन्न रीति में, ब्राह्मण ने वहां पर देवता लोग ने भी वही विंध्या चल के गुंफा में रहकर भी आनंद में रहे। तो इसको देखकर ये राक्षस बोला कि ये किसी, ये तो बड़ा तेजस्वी दिखाई पड़ रही, वहां पर रहकर भी लगता कि आस्ते आस्ते अपने शक्ति को बढ़ाकर फिर मुझे प्राप्त भी कर सकते भविष्य में, तो बड़ा ये इनको शक्ति कैसे बढ़ता है, लगता कि ये वेद का मंत्र को जो उच्चारण करते हैं, ये वेद मंत्र को पढ़कर ये शक्तिशाली बन रहे हैं, तो इसलिए वेद मंत्र को मैं चुरा लूंगा पूरा, इसका बीज मंत्र के साथ संपूर्ण वेद शास्त्रों को चुरा कर ले जाने से फिर ये उनको वेद पाठ ठीक से नहीं कर पाएंगे तो इनकी शक्ति ह्रास होने लगेगा। ये सोचकर देखा कि भगवान विष्णु चतुर्मासी के समय स्वयं कर रहे थे, अब तो ये सुजग में जाकर वेद को चोरी कर लिया, कौन? शंखासुर ने लाकर सीधा जो, लेकिन वेद जो शास्त्र के बीज मंत्र आदि से वो लेकर आ रहा था, तो ये भी भयभीत हो गया राक्षस के हाथ में देखकर, वो भी इसके हाथ से भी इधर उधर गिर गए, जो समुद्र में देखे आ रहा है उनको पहुंचा तो सारे इधर उधर बिखर गए, गिर गए, तो उनको फिर एकत्रित कर पाना इसको मुश्किल हो गया, वो सब इधर उधर बिखर गए, छुपने लगे इसके भय से। तो शंखासुर ऐसा ही जो वेदम सारे लगे, इसी समय में ब्रह्मा जी ने भी सारे देवताओं को लेकर इकट्ठी करके भगवान को स्तुति करने लगे हैं, लेकिन वेद का भी चोरी हो गया, वेद ही ब्रह्मा जी के हाथ में वेद भी नहीं है, वेदपति है, चार हाथ में वेद धारण करते ब्रह्मा देवतालोक में भी, देवतालोक में वेद स्तुति करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ये सब देखकर उनके शक्ति भी आस्ते आस्ते ह्रास होने लगे कि भगवान की स्तुति न कर पाने के कारण ब्रह्मा जी ने जाकर भगवान की स्तुति की है। इसलिए भगवान को स्वयं किए थे, उनको जागरण करने के लिए सारे देवतालोक में जाकर स्तुति की है इनकी, भगवान को स्तुति। यही चार महीने जो चतुर्मासी के समय में भगवान स्वयं के थे, उन्हीं से स्तुति करने के कारण विशेष रूप में इस महीने में कार्तिक महीने में भगवान ने भगवान जागे हरिवधि जो अंतिम जो एकादशी आता है। तो इसलिए तब भगवान ने उठकर कहे कि ठीक है आ गए, और आकर उस राक्षस की राक्षस को तो वध कर दिए, लेकिन देखिए कि फिर भी वेद से वेद पुराण के जो बीज मंत्र आदि सब चारों साइड में बिखरे हुए समुद्र के भिन्न भिन्न स्थान में। तो उन्होंने फिर बद्रिका आश्रम में वो स्वयं बैठा रहे कहां प्रयाग तीर्थ में, उसमें गंगा जमुने वहां पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन भगवान ने आकर उसी स्थान को चुने, वहीं पर बैठे। और इसके बाद सभी मुनि ने पाया, सभी बद्रिकाश्रम के मुनि ऋषि को पहले खबर दी कि आप लोग जाकर जो समुद्र के अंदर में जो बिखरे हुए सारे वेद प्राण वेद मंत्र के बीज मंत्र के साथ इनको उद्धार करो, और प्रयाग तीर्थ में आप लेके आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप सब जाकर समुद्र के अंदर से इसको सब एकत्रित करके फिर पूर्ण शास्त्र के रूप में वेद के रूप में इसको संकलित फिर प्रस्तुत करके फिर समाज में प्रचलित करो। इसलिए कहते हैं मुनि ऋषि लोग ने जाकर समुद्र के अंदर में डूब कर इसको ढूंढने लगे, जो सिद्ध मुनि ऋषि थे, तो जिसको जितने मिल पाया तो उसी उतने मंत्र का वो क्या ऋषि बन गया। बाबा उसके जो कहते हैं ये ऋषि है, ये मैंने अनुष्टुप किसी छंद कुछ अंश का एक एक ऋषि वेद के जो भिन्न भिन्न मंत्र का ऋषि अलग अलग है। तो उन ऋषि लोग ने जाकर जो समुद्र में जितने जिसको मिला तो उसी के आधार पर उस विभाग का वो क्या ऋषि बन गया, बाबा उसी का ही संकलनकर्ता बन गया। अंतिम में सारे मुनि ऋषि फिर एकत्रित करके वेद शास्त्र को प्राप्त किए। लेकिन ये जो विशेष रूप में वेद शास्त्र से एकत्रित करके प्राप्त करके प्राप्त करने का जो अंतिम जो महीना था वो है कार्तिक महीना। कार्तिक महीना में तो इसलिए भगवान को बड़े प्रिय इस मास है। ये कहानी आता है। इसके अलावा इस महीना में तुलसी महारानी की विशेष सेवा करने से पंचांग में एक मथुरा वास आ रही है, तुलसी का सेवन विशेष रूप तुलसी के सेवन करना। शंखा से वो दूसरा जो कहानी है तो वो काज समय नहीं, कल नेक्स्ट बोलेंगे जलंधर की कथा। लेकिन इसके बारे में अभी छोटा कहानी आता है कि कोई व्यक्ति हीरा लीला मोती माणिक्य के साथ में भगवान की पूजा करता है, और कोई व्यक्ति केवल तुलसी का पत्ता है, तुलसी की पत्ता लेकर भगवान को पूजन करता है, तो किसकी पूजा श्रेष्ठ है? तो पद्म पुराण में से कहानी आता है महाराज चोल की कथा। महाराज चोल चोल मतलब चोल वंश के राजा थे, उनके नाम भी महाराज चोल था। तो उन्होंने चोलराज में जाकर भगवान विष्णु रघुनाथ जी का जो अनंत साई भगवान स्वयं किए थे उनको जाकर वो पूजा करते थे। पातकड़ में स्नान करके ही जाते थे। वो राजा होने के कारण उनके पास हीरा लीला मती माणिक्य प्रचुर परिमाण में था, इसलिए वो हीरा लीला मती माणिक्य से भी बना के ले जाते थे। क्या सो फूल भगवान के लिए कई प्रकार की अलंकार गहना तुलसी फूल सब हीरा लीला मती मान के से ओरिजिनल माने फूल होकर उसी को बनाकर लेकर भगवान की पूजा करते थे। इनको भगवान को सजा देते थे, बहुत सुंदर सजाकर उनकी पूजन करते थे। लेकिन उसी गांव उसी तो उनके राज्य में एक ब्राह्मण था विष्णु शर्मा, तो बेचारा क्या था गरीब था उसके पास, लेकिन वो प्रत्येक दिन ही पाप स्नान करके तुलसी तुलसी मंजरी के साथ दुई दिगे दुई पत्ता मध्य तुलसी मंजरी यही मत अष्ट मंजरी दिवे जत्न करी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा गिरिराज जी की पूजन विधि जो कहते तो कह रहे ऐसा ही सात्विक सेवा किसको कहते ना, गंगा उनको जल में स्नान करा दो पवित्र जल में, गंगा जमुना के जल में राधा कुंड के जल में स्नान कराओ बस। इसके बाद दुई दिगे दुई पत्र मध्य कोमल मंजरी यही मत अष्ट मंजरी दिवे जत्न करी आठ मंजरी सही गिरिराज जी को चढ़ावे में प्रसन्न हो जाते हैं। रघुनाथ दास को संग जैसे सात्विक सेवक तो इनके लिए ही सात्विक सेवा था, वो कुछ खाते नहीं थे पीते नहीं थे, तो उनको केवल ऐसे ही गिरिराज जी को स्नान कराना और तुलसी मंजरी चढ़ाना, उसी से गिरिराज प्रसन्न हो जाते थे। और ऐसे 56 भोग चढ़ाकर 16 वचन दे संपूर्ण रूप में विधिवत पूजा करने से गिरिराज प्रसन्न नहीं होते, जैसे ही प्रसन्न रघुनाथ दास गोस्वामी के पूजन से हो जाते थे। तो इस ब्राह्मण ऐसे था बेचारा सात्विक भाव से, गरीब ब्राह्मण था, उठकर जाता था स्नान करके ही तुलसी दल बड़े जत्न से तुलसी मंजरी पत्र सात दो दिग में दो पत्ता मंजरी साथ लेकर जाता था, भगवान की पूजा करता था। तो एक दिन राजा देखे कि ठीक पूजा करके निकल रहे थे और बहुत देख रहे थे, सजाए थे स्वयं लेकर हीरा जड़ा मती माणिक के सारे अलंकार को सजाए थे भगवान के शरीर में बहुत सुंदर भाव से और बहुत चमक रहा था शरीर भगवान का। लेकिन ये ब्राह्मण ने गया और सब हीरा जड़ा मती माणिक को सब निकाल के साइड कर दिया और अपने तुलसी जो तुलसी के माला बना के ले गया था, तुलसी माला भगवान को पहना दिया, तुलसी के मंदिर भी तुलसी पर फूल में फिर भगवान को सजा दिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया, कैसे ब्राह्मण है, कितनी हिम्मत है, मैं राजा हूं, मैं इतनी हीरा लीला मोती माणिक्य में लाकर इनको सजाया, भगवान को ये ला गया था, तुलसी लाकर सब हटा के तुलसी तोड़ा दिया, तुलसी ढांग दिया, नहीं तुलसी से रख दे तो उसके गाने से वो अंदर दब गए, जो भी था कुछ तो साइड किया तो नीचे छुप गए, ऊपर में तुलसी की माला तुलसी की फूल तुलसी पत्ते केवल देखने दिखाई देने लगे। तो ब्राह्मण के साथ युक्ति करने लगा राजा, ये कैसे तुम किया, मैंने भगवान को इतनी सुंदर सजाया था, तुम इसके ऊपर तुलसी के पत्ता ये पत्ता ही सब डाल दिया, इसके ऊपर छुपा दिया, घना मरा से छुप गया, भगवान को अर्पण किया था। तो ब्राह्मण ने भी कहा कि राजा आपको शास्त्र पता नहीं है, शास्त्र के विधि के आधार पर तुलसी मंजरी भगवान को चढ़ाना नहीं, जितनी भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसे ही करोड़ों लोग करोड़ों स्वर्ण मुद्रा हीरा लीला मती माणिक्य में गहना बनाकर भी भगवान को चढ़ाने से उसे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तर्क होने लगा, राजा भी कहे कि नहीं शास्त्र नहीं जान, तुम मुझे शास्त्र पढ़ाता है, फिर राजा थोड़ा अहंकार भी था, राजा है कि तुम ठीक है, युक्ति तर्क होते होते राजा कहे कि ठीक है, तुम भी अपने धारा से भगवान की पूजा करो, मैं भी अपने धारा से भगवान की प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं, हम दोनों ही भगवान विष्णु के भक्त हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ होगा पहले निश्चित रूप में भगवान इसको दर्शन देंगे, भगवान निश्चित रूप में इसको पहले दर्शन देंगे, चैलेंज करके राजा चले गए। राजा जाकर अपने तो प्रचुर धन संपत्ति था और बहुत यज्ञ करने लगे, बड़े बड़े ब्राह्मण को तो कौन सा ऋषि थे नहीं एक प्रसिद्ध ऋषि उनके नाम नहीं उनके नाम नहीं। पुरोहित बनाकर एक प्रसिद्ध ऋषि की उनके नाम था अभी ठीक से तो अगस्त ऋषि भी नहीं, चलो और ऋषि को पुरोहित बनाकर यज्ञ शुरुआत के दीजिए, बहुत बड़े बड़े और सभी विशा में प्रसिद्ध ऋषि मुनियों को सब बुलाए और यज्ञ शुरू कर दिए, यज्ञ आहुति देते रहे। तो वहां भी उधर ब्राह्मण में प्रत्येक दिन क्या करता था, स्नान करके अपना तुलसी तुलसी भगवान को चढ़ाता था, स्नान करने के बाद तुलसी फूल भगवान को पूजन करने के बाद हरि पूजन करने के बाद भगवान को कुछ कुकिंग करके खिलाता था, माधु कर करके जो कुछ लाता था ऐसे कुकिंग करके भगवान को खिलाता था। प्रत्येक दिन वो कुकिंग करके जो वो अन्ना अन्ना प्रस्तुत करके रख के फिर रखता था, रख के थोड़ा सा स्नान करने के चले जाता, थोड़ा सा आते ही प्रत्येक दिन को पूरा भोग कुपन चोरी करके ले जाता था, उसके जो भगवान के लिए कुकिंग करके रखता था प्रत्येक दिन कौन चोरी करके ले जाता था, बेचारा क्या करे, फिर भगवान भोग लगने का टाइम नहीं रहता कुछ और वो भी भूखा रहता था। ऐसा ही 7 दिन बीत गए तो बोला क्या हो चल रहा है, 8वें दिन में बेचारा छुप के रहा, देखने हैं कौन कर रहा है ऐसा, कौन डेली चोरी करके ले जा रहा है। 8वें दिन में जब रखा देख रहा था कि भगवान के बहुत सावधानी से स्नान करके तुलसी मंदिर के साथ बड़े सुन मैंने भाव से पूजन करते हुए नयन आद गलद अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्रया गिरा पुलोक निचित बपु कदा तब नाम ग्रहणी भविष्यति, वाणी गदगद हो रहा था बड़े प्रेम से अष्टसात्विक विकार को प्रकट करते हुए भगवान की हरि के पूजन करते करने के प्रांत कुकिंग करके रखा और छुप के रहा कि देखता है आज कौन लेके जा रहा है। देखा कि एक कंगाल में चंडाल पूरा अस्थि कंकाल सार है, गाल पूरा घुसा हुआ हड्डी पूरा दिख रहा है, शरीर में टुकड़े मांस भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, ऐसे ही लग रहा है कि कई सालों से वो खाया नहीं हो, बड़े ऐसे संकोच इधर उधर देखकर भय भी ऐसे ही आस्ते आस्ते पैर रखकर आया और तुरंत ही उस पात्र को लेकर भागने लगा। उसकी स्थिति को देखकर ब्राह्मण का विष्णु शर्मा का उसका तो पूरा बड़ी दया उसकी अंदर ब्राह्मण आने के कारण दया भाव उत्पन्न हो गया। बोला कहाँ जा रहे भाई, रुक जाओ तुम कैसे इसे खाओगे, सूखे सूखे नहीं खाओगे पाओगे, मैं तुमको थोड़ा घी भी उसमें डाल देता हूँ। ऐसे कहकर वो भाग, लेकिन वो तो बड़ा भयभीत था, वो ब्राह्मण देख करके उसके पीछे पीछे आ रहा है विष्णुनाथ देखकर, वो तुरंत वही क्या मूर्छित होकर गिर पड़ा वो था। लेकिन ये जाकर जो तो उसके साथ में उसको उठाने के लिए प्रयास किया, बड़े दुखी हुआ कि मेरे कारण से खा भी नहीं पाया और ये बेचारा ही पूरा मरणासन्न हो गया। और उसको जब जगाने के लिए प्रयास किया तुरंत ही है भगवान को उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करने लगा, तुरंत ही दिख रहा है कि उस स्थान पर वो ब्राह्मण वो जो चंडाल नहीं था वहां पर कौन खड़े थे, स्वयं भगवान खड़े थे। जय कृष्ण के स्वयं भगवान खड़े थे। इसको देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। भगवान ने कहे कि तुम अभी मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है और तुमने जिस विधि से मेरी सेवा किया है विशेष रूप में तुलसी मंजरी के साथ मेरी पूजन किया इस कार्तिक महीने में, इससे मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हो गया हूं। तुलसी मंजरी के माध्यम पर तबला अर्पण करके ही पवित्र भाव से और तुम मेरी सेवा करके तुम मुझे प्राप्त कर ली। लेकिन एक खबर तुरंत पहुंच गया किसके पास में, राजा के पास में। राजा चैलेंज दिया था कि इसको पहले दर्शन होगा, देखता हूं तुम्हारा तुलसी पूजन श्रेष्ठ है कि यार मैं ऐसे ही जो हीरा माणिक के आडंबर के साथ भगवान की पूजन करता हूं ये श्रेष्ठ है। राजा को जब खबर मिल गया कि भगवान ने स्वयं इसको दर्शन दिए और को साथ में लेकर चले गए, कहा वैकुंठ लेकर चले गए। राजा ने तुरंत ही यज्ञाग्नि में खुद को अपने प्राण विसर्जन करना चाहा। तो मुनि ऋषि लोग इसको रुक रहे थे रोके, लेकिन जो राजा ने सही यज्ञाग्नि में कूदने के लिए तत्पर हो, ये भी महान भक्त था, फिर भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर फिर इसको भी आश्वासन देकर अपने धाम में ले गए। लेकिन यहां पर कहने का है कि जो हीरा लीला मोती माणिक के भिन्न अलंकार के साथ कॉस्टली सेवक ये पदार्थ के माध्यम से भगवान की सेवा से भगवान जितनी प्रसन्न नहीं होते उससे अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। किससे? केवल तुलसी और जल से है, तुलसी जल के साथ। अद्वैत आचार्य ने श्लोक ढूंढ रहे थे कि महाप्रभु ने यदि स्वयं भगवान को धरा पर अवतरण कराऊंगा सबसे सरल उपाय क्या है, तो उनको वो गौतमीय तंत्र की वो श्लोक दिखाई पड़ा क्या, तुलसी तो तुलसी दल मात्र जल न चूके नगा विक्रीडन ते तदात्मान भक्तभ्य भक्तवत्सल भक्तवत्सल इससे बेच जाते हैं स्वयं भगवान को खरीद लेने का ही उपाय है। यदि थोड़ा सा अंजलि भर पानी के साथ तुलसी मंजरी की अर्पण किया जाए किनको, भगवान हरि को है, जल न चोर के तुलसी दल तुलसी दल और जल लेकर जब भगवान हरि को अर्पण किया जाए उसी से हरि बेच जाते हैं, उस व्यक्ति हरि को खरीद लेता है, भगवान उसके ऋण चुका नहीं पाते हैं है? इस श्लोक को देखकर ही अद्वैत आचार्य ने निर्णय किया कि यही सबसे सरल उपाय, इसलिए उन्होंने क्या किए सालग्राम शिला को गंगा जल और तुलसी में प्रत्येक दिन पूजन करते थे और विशेष रूप से कार्तिक महीना में जो इस प्रकार कुछ नहीं है तो किसके पास में ये अर्पण कर सकता है, जल और तुलसी शुद्ध भाव से पत्रम पुष्पम फलम पोयम जोने भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम आसनानी प्रयतात्मना है। हम कहते कि जो देता है उसको मैं खाता हूं आसनानी प्रीतिपूर्वक देता तो उसको मैं ग्रहण करता हूं है? पत्रम पुष्पम फलम पोयम विशेष रूप में काली अमर कार्तिक महीने के लिए आवर किसी नहीं कोई गरीब है तो इतना ही तो कम से कम कर सकता है, प्रत्येक दिन सुबह उठना जगना तो साहब करना, भक्त लोग जगते ही है प्रातकाल में जगना स्नान करना और मंगला आरती में आते ही है जब भी करते हैं है? और विशेष रूप में जो गृहस्थ भक्त बाहर में रहते तो उनको मंदिर में जब आते तो कुछ लेके आना चाहिए इनको देने के भगवान को अर्पण करना कुछ देना चाहिए पत्रम पुष्पम फलम, इसका मतलब नहीं ये दो और आपके पास में यदि सक्षम है तो और अन्य चीज मत दो, ऐसा नहीं, लेकिन कम से कम जिसके पास कुछ नहीं तो अर्पण करें भगवान को है। इसके आगे तो फिर भगवान कह दिए इसके अगला श्लोक में जत करोसी जदासनोसी जब जोशी दासी जब जब तपस्वी कवितया तत्पुरुष मदर्पणम, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ उपहार के रूप में देते हो, जो कुछ दान के रूप में भी देते हो, और जो तपस्या करते हो, सभी कुछ मेरी प्रसन्नता के लिए करो। विशेष में कार्तिक महीना में इस श्लोक को जीवन में उतार लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। मंदिर में हम भगवान कहते जो कुछ कार्य करते हो मेरी प्रत्यर्थ में करो। विशेष में कार्तिक महीना में भगवान के प्रत्यर्थ में कैसा कर्म करना चाहिए हर एक क्लास में बताया गया। कार्तिक महीना की जो विधि कालम चर्चा करेंगे तो इसको कम से कम एक महीने में पालन किया जाए, प्रातः स्नान आदि। जो कुछ खाते हैं तो इस महीने में कम से कम किनको अर्पण किया जाए, भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में इसको स्वीकार करें। और जो कुछ उपहार देते हो, ये उपहार सारे भगवान को तो मुझे दो, दूसरों को नहीं। इसके जन्मदिन में बर्थडे में जाते हो, शादी पार्टी में जाते हैं, और कई पार्टी में कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं, भगवान कहते सारे गिफ्ट मुझे दो, हैं? ये मेरे विशेष रूप में मुझे प्रिय है। और दामोदर मास आप कहते हैं, लेकिन यही राधा कार्तिक महीना होने का कार्तिक का राधा रानी का भी मास है। इसलिए सर जितनी जहाँ कुछ तुम प्लान करते हो उपहार किसको गिफ्ट देने के लिए, सारे गिफ्ट यहाँ ला के दो, मंदिर में दो, हैं? राधा रानी को दे दो या कृष्ण को, राधा गिरधारी को दो। और कुछ यदि दान में देना चाहते हो उपहार दो, और दान में कुछ देना चाहते हो दान में से मुझे दो, दान दूसरे को नहीं। भगवान कहते त्यागना नहीं चाहिए, चाहे कोई कितनी भी पुण्यात्मा हो अथवा मध्यम है, भगवान कहते कि यीशु दान क्या तपस्या दान पुण्य कर्म ये जो इसको त्यागना नहीं, पावनानी मुनि सुना, बड़े बड़े मुनियों को भी यह पवित्र करता है, इसको त्यागने का योग्य नहीं है। सख्य मुथा सभी को इसे पुण्य करना चाहिए, दान देना चाहिए। और जो भी तपस्या है सारे तपस्या मेरी प्रसन्नता के लिए करो, ये जो भगवान की प्रसन्नता के लिए जितनी तपस्या है इनसे सर्वश्रेष्ठ तपस्या है एकादशी और कार्तिक व्रत। विशेष रूप में कार्तिक महीना में व्रत धारण करना, तो इस प्रकार काल कार्तिक व्रत के विधि की चर्चा करेंगे। काल यहीं पर बाणी को विश्राम देते हैं, यदि किसके प्रश्न है तो कोई जिज्ञासा कर सकते हैं। काल व्रत धारण करने की विधि विशेष पर चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न है किसके, तो काल बताएंगे ना मुख्य जो दीपदान का काल जो विधि बताए थे उसमें दीपदान, दीपदान बहुत कई प्रकार के दीपदान है, तो काल चर्चा करेंगे दीपदान का। और कोई तो काल को बताएंगे, ठीक है।
क्या का खाना चाहिए महाराज,
हैं
तीन महीने में खाने का क्या विधान,
क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, विधि निषेध काल बताए, काली कार्तिक व्रत की जो विधि निषेध काल चर्चा करेंगे बताए ना। आज जितने में चर्चा किया उसके बारे में कोई प्रश्न है तो ये कह रहे कि कोई मथुरा नहीं गया जा पाता था, जैसे साधारण हरिभक्ति विलास में विशेष में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मथुरावास है, कार्तिक महीना में मथुरावास का बहुत बड़ा महत्व है। कोई अन्य स्थान में रहकर जो पुण्य कार्तिक महीना में संचय कोई करता है तो उससे 100 गुण अधिक पुण्य मिलता है, कहाँ 1000 गुण पुण्य, ये केवल कार्तिक महीना में जाकर मथुरा में यदि करता है तो मिलता है। ये सब केवल मथुरा कार्तिक महीना के लिए नहीं, सभी समय में ये कहा गया कि वृंदावन मथुरा महात्मा में से कहा गया मथुरा के महिमा। एक बार यदि कोई हरे कृष्ण मथुरा में कहता है बैठकर, हरे कृष्ण मंत्र मथुरा में जप कर रहा है वृंदावन में बैठ के, अन्य स्थान में 1000 बार उसके जप करने के फल के साथ उसको समान फल मिल जाता है, लेकिन साथ साथ जो पाप करता है उसका भी 1000 गुण फल उसको भोगना पड़ता है, वो भी 1000 गुण भोगना पड़ता है, केवल पुण्य नहीं पाप भी भोगना पड़ेगा। 1000 गुण यदि ऐसे बंदे में जल के रह के कोई पाप किया कुछ, उसका जितना रिएक्शन होता है उसकी 1000 गुना अधिक रिएक्शन होगा वो पाप, जब सेम पाप यदि करेगा कहाँ रहकर वृंदावन में है। अन्य स्थान है केतंग पापन तीर्थ स्थान है प्रमुच्यति, तीर्थ स्थान है केतंग पापन वज्रलेप भविष्यति, वज्रलेप समान वो मिटने वाला नहीं कहीं। तो इसलिए वृंदावन कहते कि गोस्वामी लोगों की स्थान है, जो गोस्वामी है जिनके द्वारा पाप कर्म कभी होता नहीं है, तो वो वहां पर रहकर बैठकर रहेंगे तो बस उन्हें जितने पुण्य के मन जो कुछ करेंगे वो हजार गुण बढ़ते जाएंगे, लेकिन उनसे पाप होता नहीं है, पाप कर्म करते नहीं है। वाचो वेगम मानसो क्रोध वेगम जुहा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये सब कंट्रोल करके रखते हैं। एतान वेगान जो विषय है धीर है, ऐसे धीर पुरुष ब्रज में वास करते हैं गोस्वामी लोग। चैतन्य महाप्रभु ने इनको चुना एक गोस्वामी को ब्रजवास करने के लिए है। जगदानंद पंडित भी आ रहे थे तो उनको बोले कि नहीं तुम ब्रज में नहीं रहना, जा मत जाओ उधर। जाता है तो मेहमान कर जब आने लगे बोले कि बहुत सख्त पीरियड, जाकर तुरंत वापस आना, वहां रहने का तुम योग्य नहीं है। कौन? जगदानंद पंडित। जाना भी तो ब्रजवासी से मिलजुल नहीं करना, जाकर सनातन के साथ में रहना, सनातन रूप के संग में रहना, ब्रजवासियों से मिलजुल नहीं करना है। तो इसलिए हम कार्तिक के जो वृंदावन में वास करने के पहले 10 धाम अपराध को भी जान लेना चाहिए। धाम अपराध जैसे हमसे न हो, जैसे नाम अपराध 10 है, इस प्रकार धाम अपराध भी 10 है। नाम अपराध से तीसरे अपराध है गुरु की आज्ञा को अवज्ञा करना, लेकिन धाम अपराध से पहला अपराध है हैं गुरु आदेश को उल्लंघन करके धाम में वास करना, ये पहला अपराध है हैं। ये यदि करता अपराध करके रहता है तो गुरु आदेश को उल्लंघन करके धाम में वास कर रहा तो फिर उसके धाम वास का कोई फल नहीं मिलने वाला है अपराध के कारण। तो इस प्रकार 10 धाम अपराध भी है, एक एक करके चर्चा करने बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए आप कहीं भी रहो है, लेकिन मन को रखो कहां? कृष्ण की चरण में। सारे विधि भक्त की विधि भक्ति का बा साधन भक्ति की जो अंतिम निर्णय रूप गोस्वामी यही देते हैं, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातोचित सर्व विधि निषेधेषु एतयोर एव किंकर है। सभी विधि निषेध जो पालन करते साधन भक्ति की, ये सभी ये दो नियम के नौकर है। सदा भगवान कृष्ण के स्मरण रखो, कभी उन्हें भूलो मत, उनको भूलना नहीं, ये सारे लक्ष्य यही है। अंते नारायण स्मृति है, भजन करी साधन करी मरते जानने है। संक्षिप्त में प्रभुपाद ने कहा करते थे कैसे भजन साधन किया है वो टेस्ट होगा कब? मृत्यु के समय में कैसा भजन साधन किया जीवन काल में है वो परीक्षा होगा। ठीक है हाँ, कोई पत्र नहीं, प्रास पत्र कहाँ से मिले, कोई पत्र पत्ते में खाओ, कम से कम मेटल पत्र में पत्ता पत्ता पवित्र माने जाते हैं। केला पत्ता है और वो जो क्या उसको बोलते हैं साल, साल के पत्ते भी होते हैं। हाँ क्या पितृपक्ष क्या होता है? पितृ उद्धार होते सर्वम, उनके पितरों से जो नर्क में पड़े हुए हैं भागीरथ ने उद्धार किया, भागीरथ ने उद्धार किया किनको? ठीक है नहीं, पितरों को उद्धार किया, अपने जो हमारे जो पितृपुर जो सब शरीर त्याग चुके हैं और उनके पाप कर्म के कारण वो भगवान के धाम नहीं जा पा रहे हैं, अभी तक नर्क में पड़े हुए, तो इनको उद्धार करने के लिए कार्तिक व्रत जो धारण करता है तो उस कार्तिक व्रत की पुण्य से वो सारे उद्धार हो जाते हैं। भागीरथ ने उद्धार किया कैसे? गंगा को लाकर, तपस्या करके गंगा को लाकर उनको उद्धार किया, गंगा उनकी अस्थि को गंगा जल में स्पर्श करके गया तो फिर वो उद्धार हो गए, पाप से मुक्त हो। इसलिए आज भी कोई आदमी शरीर त्यागता तो उसको अस्थि को लेकर गंगे में डालते, गंगा में गंगा अस्थि करते हैं। लेकिन ऐसे ही न करते हुए कभी यदि व्यक्ति कार्तिक व्रत का पालन करता है तो उसके पितरों समस्त पाप से मुक्त होकर भगवत धाम चले जाते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद प्रभुपाद की समवत वैष्णव भक्त वृंद की जय। परंतु जो प्रभुदानंद सरस्वती महाराज की जय, तो बड़ा सुंदर कीर्तिदास के पुत्र, उनका नाम है कार्तिक, तहसील नाम से कार्तिक का नाम दामोदर मास ऐसा नाम है। तो बड़े सुंदर हमें बताया कि कार्तिक मास का व्रत पालन करके गुणवती सत्यदामा बन गई, इतना बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। तो इसका विधि विधान क्या है कल हम जानेंगे। महाराज जी विशेष रूप में वृंदावन से यहाँ आए, महाराज जी व्यस्त रहते हैं प्रचार में देश विदेश, पर हम सबके ऊपर कृपा करने के लिए
मेरा बुलाया काम मिलकर आभार प्रकट करते हुए एक बार हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे कल विधि विधान का वर्णन होगा, जरूर आइए। और आने वाला कार्तिक महीना महीना है, इसमें इस सब बातों को हम जीवन में उतार के कार्तिक का लाभ लेंगे। हरे कृष्णा। कल भी क्लास यहीं पे होगा, आप लोग यहीं पे आ जाइए और समय से आ जाइए। हरे कृष्णा। थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय। अभी सभी के लिए प्रसाद है,
बोले
महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवत राजन विश्वासो निर्जायते शरीरा विद्या जाल जलेन्द्रियता हि काल
जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवाते लोभ माया सुदुर्मती